ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकम् दैवेन नीत प्रसभं त्याजित श्रिय इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितम् यया ध्रुवं स्ताब्धमतिर्न बुध्यते। बलि महाराज श्री भगवान के पास अपने उद्गार को रख रहे हैं। दैवे ननीत प्रसभम त्याजित श्री, दैव ने विधाता ने, दैव माने भगवान, दैव माने अपना प्रारब्ध, अपना पूर्व कर्म, जो भी जिस भी अर्थ में लिया जाए, दैवेन माने आपके द्वारा अथवा मेरे कर्मों के द्वारा, जो प्रसभम बहुत बलवान है, जबरदस्ती त्याजित श्री, मैं नहीं देना चाहता था लेकिन छीन लिया गया, आपने छीन लिया, ये मेरा प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया। यह अच्छा ही हुआ, यथा अच्छा हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य मद के कारण बुद्धि स्तब्ध हो जाती है। इदम कृतांतांतिकवर्त जीवितम, यह मेरा जीवन जो कृतांत अंतिक वर्ती है, कृतांत है, सब कुछ करे कमाए पर पानी फेर देता है, उसको कृतांत कहते हैं, मृत्यु, वो सब कुछ समाप्त करने वाला है, उसके अंतिक वर्ती, उसके निकट चले गए हैं, बिल्कुल पंजे में है, सारा जीव समुदाय मृत्यु के पंजे में है, अर्थात अध्रुवम, निश्चित रूप से अनित्य है, टेम्पररी है, और इस स्थिति में आप मुझे डाल दिए, बहुत अच्छा किए। एक दिन तो मृत्यु के द्वारा सब कुछ छीन ही लिया जाएगा, कुछ भी बचा कर रखिए, खूब भी सजा कर, एक पैसा भी मत खर्च कीजिए, खूब संभाल कर अपना बैंक बैलेंस रखिए, लेकिन साथ नहीं जाएगा, वो सब छूट जाएगा, सब कुछ चला जाएगा मृत्यु के साथ। तो आपने अच्छा ही किया कि इसी जीवन में उसे अलग कर दिया, जो छूटने वाला है उसे छोड़ा दिया। और उस ऐश्वर्य मद का एक दोष बतला रहे हैं, वह मति को स्तब्ध कर देता है। स्तब्ध का अर्थ है जड़, एकदम समझने नहीं देता है। धन ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीवों की बुद्धि जड़ हो जाती है, वह समझ ही नहीं पाता कि मेरा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, इस तरह के अन्याय दुराचार करके हम क्या करेंगे, नहीं समझने देता है। तो आपने अच्छा किया, समझने की दृष्टि दे दी, पहले ही सब छीन लिए, बहुत अच्छा हुए, बहुत अच्छा काम किए। आत्मरिपो, आत्मरिपो का अर्थ है मेरा दुश्मन, अपना दुश्मन, देवता लोग, देवता के पक्ष में उपस्थित होकर आप भी मेरे दुश्मन हैं, लेकिन इससे भिन्न भी अर्थ है। आत्मरिपो का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हमारा जो दुश्मन है, हमारा अहंकार कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, यह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, स्वरूप से भिन्न स्थिति में लाने वाला हमारे अहंकार रूप शत्रु। क्या अहंकार है? त्रैलोक्याधिपतित्व रूप अहंकार, इसको आप विनाश कर दिए, हमारे शत्रु से हमारा पीछा छुड़ा दिए, इस अहंकार रूप महारोग का आप विनाश किए, बहुत अच्छा किए। इस अहंकार में मैं फूला रहता था कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, मेरे अधीन सब कुछ है, इसको आपने नाश कर दिया। अब कोई अहंकार नहीं है कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, क्योंकि आपके बस में हो गया, सब आप ले लिए। दैवेन कहने का मतलब प्रहलाद पौतत्व प्रापक सौभाग्य द्वारा जैसे इन संपत्तियों के मोह में पड़कर मुग्ध मति व्यक्ति मृत्यु सैया पर भी आकर इसे अनित नहीं मानता, किंतु आप तो सौभाग्यवशतः धन्वंतरी की तरह उपस्थित हुए और सारे रोग को ही समाप्त कर दिए। यह भाव है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दैवेन, दैवेन का अर्थ कि आपकी कृपा से, मेरे सौभाग्य से मुझे प्रहलाद का पौत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन संपत्तियों के कारण लोग वृद्धावस्था में मरण सैया पर पड़े रहते हैं लेकिन धन को नहीं छोड़ना चाहते। उनको भी पता है कि हम कभी किसी क्षण भी शरीर छोड़ सकते हैं, किसी क्षण भी, लेकिन अपने संपत्ति को किसी को देना नहीं चाहते। इतना व्यामोह बना रहता, वो अपने आप छूट जाएगा, वो किसी न किसी के हाथ में चला जाएगा। हमारा कितना सौभाग्य है कि मैं प्रहलाद का पौत्र हुआ, यह ज्ञान मुझे पहले से है, इस धन में कोई दम नहीं है, यह हमारे साथ नहीं रहने वाला है। तो इस अनित्य धन के प्रति मैं आसक्त नहीं हूँ। फिर दोबारा आप मेरे सौभाग्य से उपस्थित हो गए, अगर यत किंचित मेरे अंदर कुछ धन के प्रति आसक्ति भी थी तो आप ऐसा ट्रिक चले कि सब कुछ ले लिए। मैं चाह कर भी नहीं बचा सकता, मेरा जो कुछ भी आसक्ति थी उसको आप छीन लिए, बहुत अच्छा किए। वास्तव में आप मेरे रोग के लिए धन्वंतरी हैं, साक्षात भगवान धन्वंतरी उपस्थित होकर मेरे रोग को नष्ट कर दिए। रोग क्या है? अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरा ये धन है, मेरा ये पद है, मेरा ये पोजीशन है, मेरी ये प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, ये रोग है। यह बहुत बड़ा रोग है, इस रोग से हमको मुक्त कर दिए, बहुत अच्छा किए। तब यह कह करके बलि महाराज चुप हो गए। अभी बलि महाराज भगवान के समक्ष ऐसे बोल रहे थे तब तक उसी समय प्रहलाद महाराज वहां उपस्थित होते हैं। श्री शुक उवाच, तस्येत्थं भासमानस्य प्रहलादो भगवत प्रिय आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिव स्थित। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, बलि जिस समय बोल रहे थे उसी समय उत्थित राकापति इव भगवत प्रिय प्रहलाद आजगाम, उदय होते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रहलाद वहां उपस्थित हो गए। प्रहलादो भगवत प्रिय, प्रहलाद की विशेषता बतलाते हैं कि भगवान के प्रिय हैं, वो उपस्थित हो गए, वहां आ गए। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। तस्मिन् दृश्येन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणम् प्रांशुं पिशंगां वरमञ्जनत्विषं प्रलंब बाहुं सुभगं समैक्षत। इंद्रसेन बलि महाराज के लिए कहा गया है, इंद्रसेन तम स्वपितामहं समैक्षत। महाराज बलि अपने पितामह को देखा, बलि महाराज बंधे हुए हैं, उसी बंधे अवस्था में देखते हैं अपने पितामह को। देखते हैं तो पितामह प्रहलाद कैसे लग रहे हैं। श्रिया विराजमानम नलिनायत ईक्षणम प्रलंब बाहुम पांशुम सुभगम अंजना त्विषम पिशंग अम्बर। प्रहलाद महाराज के ऊपर बलि महाराज की दृष्टि जा रही है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, श्रिया विराजमानम, श्री संपन्न लग रहे हैं, कमल के समान कोमल, लाल लाल और बड़ा बड़ा नेत्र है, नलिनायत ईक्षणम, सुंदर कमल के समान इक्षण दृष्टि है। जो कमल से उपमा दे रहे हैं कि कोमलता की दृष्टि में कोमल है कमल के समान और लाल लाल है, खूब सुंदर। और प्रलंब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं हैं। प्रांशु सुभगम, सुंदर उन्नत अंजना तिशम, श्यामल शरीर है। पिशंग अम्बरम, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, भगवान जैसा ड्रेस पहने हैं, पीताम्बर पहने हैं, बड़ी सुंदर उन्नत उज्जवल भगवान के शरीर जैसा श्यामल आभा है। प्रहलाद महाराज का शरीर बड़ा सुंदर लग रहा है, बलि महाराज देख रहे हैं, लेकिन बलि महाराज आज अद्भुत अवस्था में देख रहे हैं। पितामह आए लेकिन हाथ जोड़कर बलि महाराज प्रणाम नहीं कर सकते हैं, न पैर छू सकते हैं, न दंडवत कर सकते हैं, बंधे हुए हैं। तस्मै बलि बारुण पाशयन्तितः समर्हणम् नोपजहार फुर्वत न नाम मूर्ना सुबिलोल लोचन सबीडनी चीन मुखो बभुव। बलि बारुण पाशयन्तितः तस्मै पूर्वत समर्हणम् न उपजहार। इस प्रकार बलि वरुण पास में बंधे हुए हैं और प्रहलाद के आने के बाद जैसे पहले सम्मान करते थे वैसे पूर्वत समर्हणम न उपजहार, पहले जैसा नहीं कर पाए, न प्रणाम किए हाथ जोड़कर, न पैर छू पाए, न उनके लिए आसन दे पाए, न उनका सत्कार कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो बंधे हुए हैं, प्रहलाद महाराज का जैसा सत्कार करना चाहिए वैसा बलि नहीं कर पाए। अश्रु बिलोल लोचन सबीड नीचीन मुख बभुह, ज्यों ही प्रहलाद महाराज को देखे आंख नीचे हो गया, देख भी नहीं पाए। प्रणाम करना, सत्कार करना, कुछ बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनको देखते ही देखे कि प्रहलाद आ गए तो लज्जा के मारे एकदम मुंह झुक गया, सिर झुक गया। सबीड नीचीन मुख बभुह, लज्जा के मारे मुंह नीचे हो गया और मुंह नीचे करके मूर्ना न नाम, केवल सिर झुकाकर नमस्कार भर किए, ऐसे गर्दन नहीं बंधा था, गर्दन के सिर के नीचे हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, तो गर्दन को झुका करके नमस्कार किए, नमस्कार किए और बहुत लज्जित हुए, उनके आंखों में आंसू गिरने लगा। स्वकृता अहंकारादि रूपा पराधेन स्मरणेन सबीडम नीचिन अधो मुखम जस्य स। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज को देखते ही बलि महाराज को बड़ा संकोच हुआ। क्या संकोच का कारण था? कि अपने द्वारा किए गए अहंकार रूप अपराध के कारण ये स्थिति प्राप्त हुई है। मैंने भगवान के प्रति अपराध किया, अगर मैं इस प्रकार नहीं कहा होता कि लोकानाम एकमेश्वरम, मैं तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी हूँ, बोलो जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, इस प्रकार अगर नहीं कहा होता तो आज ये दशा नहीं प्राप्त होती। वास्तव में मैंने अपराध किया है। अगर मान लीजिए प्रहलाद महाराज आते ही पूछे, अरे बांध दिए गए हो, कौन सा गलती किया, कुछ पूछने लगेंगे तो अब क्या होगा? बिना अपराध के बांधा गया ये संभव नहीं है, और वो भी किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। भगवान बिना अपराध के किसी को बनवाएंगे ये संभव ही नहीं है। भगवान कभी गलती नहीं करते। लोग कहीं कहीं लिखे रहते हैं, जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करते जाता है उसे हैवान कहते हैं। तो भगवान के विषय में जन समाज की भी धारणा है कि वो गलती नहीं करते, है ना? लोगों की यह मान्यता है कि भगवान कभी गलती करते ही नहीं, तो जो कभी गलती नहीं करते उसे भगवान कहते हैं। भगवान तो बांधेंगे नहीं, ऐसे नहीं बांधेंगे, निश्चित रूप से अपराध किया होगा। प्रहलाद महाराज सोच सकते हैं, प्रहलाद महाराज को देखते ही बलि महाराज को अपना अपराध स्मरण होने लगा कि मैंने अहंकार रूप अपराध किया है, भगवान के सामने खूब बहस बांधा है, यह अपराध है, इसलिए मुंह नीचे कर लिए। चक्रवर्ती ठाकुर इसी टीका को थोड़ा सा विस्तार करते हैं। अपराध बिनम कथम बंधनम इत्यह अपराध लक्षणस्य प्रहलाद दिष्टत्वात् सवीडम। अपराध बिना कथम बंधनम, बिना अपराध के बंधन कैसे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को देखकर अपना अपराध स्मरण करके बलि का सिर झुक गया, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि प्रहलाद की दृष्टि पड़ी और बंधन में बलि को देखे तो सोच सकते हैं कि अपराध बिना कथम बंधनम इत्य अपराध लक्षण से प्रहलाद दृष्टत्वात् सबीडम। प्रहलाद लज्जित हो गए। यदवा प्रहलादात सदैव शिक्षितस्य निर्भिमानत्व लक्षणस्य धर्मस्य भूमि दान प्रस्तावे सहसा विस्मरणात् सति सबीडम। जिस बलि को प्रहलाद बचपन से सिखाते रहे कि बेटा तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना, बेटा हमेशा अभिमान छोड़ करके किसी का सम्मान करना चाहिए। यदवा प्रहलादात सदैव शिक्षितस्य, प्रहलाद के द्वारा हमेशा शिक्षा मिला है निरभिमानत्व लक्षणस्य धर्मस्य, निरभिमान रहना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, यह जीवन भर सिखाते रहे। लेकिन भूमि दान का प्रस्ताव आया तो सहसा भूल गया, उस समय अहंकार आ गया, तो भूमि दान प्रस्तावे सहसा विस्मरणात् सति सबीडम, भूमि दान के प्रस्ताव आते ही वो भूल गए प्रहलाद के ज्ञान को और अहंकार कर गए। सबीडत्वात् एव नीचिन मुख जस्य स, यह याद करके जिनका सिर झुक गया, अब उनके सामने कैसे मुंह दिखाऊं। तुमको बार बार कह रहा था ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा पूछ देंगे तो क्या कहूंगा। कभी कभी ऐसा होता है एकदम संकोच हो जाता है, जो बात मना किए हैं वही व्यवहार करने के बाद सामने पड़ने पर बहुत लज्जा होती है बड़ों के सामने। जो भी शिष्ट व्यक्ति है, शिष्ट परिवार में है, उसके साथ व्यवहार जरूर आया होगा कि अरे क्या जवाब दूंगा इनको, अगर ये पूछ देंगे कि तुम ऐसा क्यों किया, तुमको सिखाया था ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए, फिर क्या जवाब दूंगा। इस संकोच से प्रहलाद महाराज को देखते ही बलि महाराज का सिर झुक गया। ऐसा होता है कभी कभी अपने पिता, अपना बड़ा भाई, अपना चाचा कुछ सिखाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, वो लड़का ठीक नहीं है, उसके साथ तुम मत बैठो, मत घूमो, मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मत बैठो क्योंकि वो गलत आदमी है। तो इस तरह अगर कई बार कहते हैं और स्वीकार भी किया ठीक है, और फिर कहीं बैठा हुआ दिख गया तब क्या होगा या उसके साथ, तो बड़ा भारी संकोच होता है, अरे ऐसा ठीक नहीं है, कई बार संकोच में पड़ जाते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि फिर ऐसा क्यों किया, कुछ उत्तर नहीं है, अब संकोच के मारे सिर ही झुकता है, क्या किया जाए। तो इस स्थिति में बलि महाराज पड़ गए हैं। कई कारण है सिर झुकाने का, उनकी आंखों में आंसू आ गया। पहले तो भगवान के प्रति अहंकार किए हैं इसके लिए सिर झुकाए, और उनके आंखों में आंसू आने लगा कि आज मेरी ऐसी दशा है कि अपने कर्मों के कारण मैं अपने पितामह का स्वागत नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं ऐसा अहंकार नहीं करता तो प्रहलाद महाराज के उपस्थित होने पर उनको प्रणाम करता, पैर छूकर स्वागत करता, लेकिन हाय मेरा दुष्कर्म, इनके उपस्थित होने पर भी मुझे प्रणाम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से उनके आंखों में आंसू आने लगा, नेत्र चंचल हो गया, लज्जा के मारे सिर झुक गया, केवल सिर झुकाकर अभिवादन कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। तो इस तरह प्रहलाद महाराज के सामने बलि महाराज प्रस्तुत हुए। सतत्र हासीन उद्वीक्ष सतपतिम सुनंद नंद्यादनु गैरुपासितम उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मुर्ना पुलकासु विक्लव। प्रहलाद महाराज देखते हैं कि सतपतिम तत्र आसीनम, सतपुरुषों के स्वामी श्री भगवान बैठे हैं, सुनंद नंद आदि अनुगई उपासितम, सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर चित्र बनाए हैं, आप पुस्तक में देख सकते हैं कि भगवान, छोटे से भगवान आसन पर बैठे हैं, नंद सुनंद परिकर चामर डुला रहे हैं, प्रहलाद महाराज उपस्थित होते हैं और बलि महाराज वहीं बंधे हुए सिर झुकाए हैं। बड़ा सुंदर चित्र है पुस्तक में, एकदम श्लोक के अनुरूप चित्र है। सतत्र हासीन उद्वीक्ष सतपतिम सुनंद नंद्यादनुगैरुपासितम उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ना पुलकासु विक्लवः। नंद सुनंद आदि पार्षद भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रेम के उद्रेक के कारण प्रहलाद महाराज के शरीर पुलकित हो गया और उनके आंखों में आंसू छलक आया। भगवान को देखे आसन पर बैठे हुए और बलि को देखे बंधे हुए, देख करके प्रहलाद महाराज की आंखों में आंसू छलक आया। और उपेत्य, उपेत्य माने बिल्कुल निकट जाकर, एकदम आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए हुए अपने स्वामी के पास गए और भूमौ मूर्ना शिरसा ननाम, पृथ्वी पर सिर रह करके सष्टांग दंडवत किए, एकदम जमीन पर लौट करके प्रणाम किए, प्रणाम करके भगवान के चरण को छुए और वहीं खड़ा हो गए। एकदम आंखों में आंसू गिर रहा था प्रहलाद महाराज के, और प्रहलाद महाराज भगवान के सामने बोलने लगे, झुक करके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोलते हैं, बहुत सुंदर वक्तव्य है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद उवाच, त्वयैव दत्तम पदमेन्द्र मूर्जितम हितम तदैवाद्य तथैव शोभनम मन्ने महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो बिभ्रंसितो य श्री आत्म मोहनाथ। प्रहलाद महाराज श्री भगवान वामन देव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बलि को यह ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया है, आपने ही दिया था। आप कैसे आपने दिया है? कह रहे हैं कि यह बलि आपकी आराधना किया विश्वजीत यज्ञ के द्वारा, तो उस यज्ञ कुंड से रथ निकला और उस रथ में युद्ध की सारी सामग्री निकली, सब कुछ निकला, तो यह आपके ही कृपा से संभव है। आपने इसको इतना समर्थवान रथ दिया और जिस रथ को लेकर यह स्वर्ग पर विजय प्राप्त किया, तो आपने त्रिलोकी का राज्य दिया है। तो यही वह दत्तम, आपके द्वारा ही दिया गया है। पद्मेन्द्र मूर्जितम, उर्जितम ऐन्द्र पदम, उर्जितम ऐन्द्र पदम, यह विकसित ऐश्वर्य पूर्ण सारे साज समाज से भरा हुआ इंद्र पद आपने दिया है। त्वयी त्वयी एव, आपने ही दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। त्वयी कहने से भी काम चल सकता है, आपने दिया है, लेकिन कहते हैं एव, निश्चित रूप से आपने दिया है। ऐसा नहीं कि बलि के पुरुषार्थ से मिला है, आपने दिया है ऐश्वर्य पूर्ण यह इंद्र पद, इंद्र का पद। तत अद्य एव हितम तथा एव शोभनम, और आज आपने ही छीन लिया, ट्रिक करके भिक्षुक का रूप धारण करके आए और मांग लिए, आसानी से छीन लिए। तथा एव शोभनम, जैसा आपका देना सुंदर है वैसा ही आपका लेना भी सुंदर है। एव शोभनम, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ी कृपा है। मन्ने अस ही महान अनुग्रह कृत, मन्ने महानस्य कृतो ह्यनुग्रह, मैं ऐसा मानता हूँ कि अस्य इसके ऊपर ही निश्चित रूप से मन्ने ही अनुग्रह, ही अनुग्रह फिर ही निश्चित के अर्थ में कहते हैं, अनुग्रह से भी काम चल सकता है, लेकिन ही अनुग्रह निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है, महान अनुग्रह, थोड़ा अनुग्रह नहीं है। मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ, मन्ने अस्य ही महान अनुग्रह कृत, मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके ऊपर निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा। क्या आप कृपा किए हैं? तो विभ्रंसितो य श्री आत्म मोहनाथ, यत आत्म मोहनाथ श्रीयम विभ्रंसित, जो आत्मा को मोहित करने वाला है वो संपत्ति छीन लिए हैं, यह बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है आपके द्वारा। जिस धन संपत्ति ऐश्वर्य के मद में व्यक्ति आपको नहीं समझ पाता, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा हमारा कर्तव्य है, भूल जाता है, उस राज लक्ष्मी से आप अलग कर दिए, बहुत अच्छा किए। इसी बात को आचार्य लोग कहते हैं, तो यही व्यक्ति नहीं ऐन्द्रम पदम एतत् दीयम त्वया अपहृतम किंतु स्वयमेव पुनः स्वकृतम तच्च शोभनमेव कृतम तत्र हेतु मन्ने इति यदस्मात् श्रीरेव यदात्म आत्म मोहनम तस्मात् विभ्रंसितः। कितनी अच्छी बात है कि हे प्रभु, आपने ही ये इंद्र का पद दिया और आप ही इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप ही इसको ले रहे हैं, पुनः स्वयं आप ही इसको ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसको ले करके आप इसके अज्ञान को दूर कर रहे हैं, जो आत्मा को मोहित करने वाला साधन है उससे इसे मुक्त कर रहे हैं, आत्मा को भ्रम में डालने वाला जो धन संपत्ति ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा है उससे आप इसे दूर कर रहे हैं, आत्मा के स्वरूप से विचलित कर देता है धन। अगर मानो भगवान पूछ दें कि क्यों ऐसा कह रहे हो, धन में इतना दोष है, तब फिर कहते हैं रे प्रभु साधारण लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, विद्वानों की भी हालत गंभीर हो जाती है, जो जानकार है वो भी मोहित हो जाता है। यया ही विद्वान अपि मोहियते जतः तत्को विचष्टे गतिमात्मनो जथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाया खिल लोक साक्षिणे ही यया विद्वान अपि मोहियते। हे प्रभु कमजोर बुद्धि वालों को तो बात ही मत कीजिए, वो तो धन पाएगा तो एकदम मतवाला हो जाएगा, शराब पिएगा, व्यभिचार करेगा, लोगों को सताएगा, तंग करेगा, मर्डर करेगा, क्या क्या करेगा, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। विद्वान अपि मोहियते, लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। खूब जानकार व्यक्ति जो जानते हैं कि धन में दोष है, पद में दोष है, फिर भी मोहित हो जाते हैं। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अमानिना मान देना, इस ज्ञान को रखने वाला व्यक्ति भी धन के बस में होकर मद में हो जाता है, मोहित हो जाता है। ततः यत यथा का आत्मनः गति, उसके रहते भला कौन व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक जान सकता है। आत्मनः गति विचष्टे, विचष्टे माने जानना। तत यत दो शब्द का प्रयोग किया, इस पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं यत और तत का क्या अर्थ है। तत यत यथा क आत्मनः गतिम विचष्टे, उसके रहते तत माने उसकी उपस्थिति से, जत जो किसी भी स्थिति में उस संपत्ति के रहने पर व्यक्ति भला आत्मनः गतिम विचष्टे अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है ना, नहीं जान सकता है। वही तस्मयी वैसी लक्ष्मी को छीन लिए जो आत्म स्वरूप से व्यक्ति को मोहित कर देती है, जो अपने स्वरूप में रहने ही नहीं देती, साधु का अपमान, वैष्णव का अपमान, भगवान का अपमान, सबका अपमान व्यक्ति करता है, उसको छीन कर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। जगत ईश्वराय अखिल लोक साक्षिणे ते नारायणाय नमः, समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान प्रभु, सबके हृदय की बात जानने वाले परम साक्षी हे नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मोहनत्वम एवं आह, इस मोहन अज्ञान का कारण क्या है, धन में क्या फसावट है। जया श्रिया विद्वान अपि जत संयतोपि मुह्यते ततस तस्याम सत्याम कोन्य पुमान आत्मनो गतिम तत्वम यथावत विचष्टे पश्यति। कहते हैं कि संयतोपि मुह्यते, जो संयम में रहता है, जो निग्रही है, जो जितेंद्रिय है, जो अपने आप को समझता है, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, ऐसे संयत मतलब निग्रही व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो समझता है कि क्या किस रूप में है, इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, कहाँ फसावट है, इस बात को जो जानता है, वह व्यक्ति भी मोहित हो जाता है। ये सत्य बात है। फिर अन्य व्यक्ति की गति क्या होगी, साधारण की स्थिति क्या होगी। तस्मै महाकारुणिकाय, वास्तव में आपने बहुत बड़ा करुणा किया है, बहुत बड़ा आप करुणा करके धन ले लिए, बहुत अच्छा किए। अगर मान लीजिए भगवान कहे, किस प्रकार की बात कहते हो कि मैंने ही धन दिया है, मैंने ही ले लिया, तो ये तो दत्ता पहाड़ का दोष लगेगा ना, देकर छीन लेना। मान लीजिए किसी के हाथ में कुछ खाने के लिए दिए और हाथ में लिया, जेव ही खाने के लिए चला तेव ही छीन लिए, तो ये तो बहुत भारी गलती है, इसको दत्ता पहाड़ कहते हैं, दे कर लेने वाला, दिया और छीन लिया, तो इस प्रकार का दोष लगेगा ना। तो कहते हैं ना ना, इससे दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए स्नेहवान पिता अपने बेटे को मिठाई देता है और स्नेह में प्रेम में दे दिया, लेकिन दूसरे क्षण पता चला कि नहीं नहीं मिठाई खाने से तो इसका अनिष्ट हो जाएगा, इसके पेट में कीड़ी है और बढ़ जाएंगे, डॉक्टर मना करता है नहीं खाना है, तो ज्यों ही यह याद आया कि बेटे को मिठाई खाने से अनिष्ट होगा तो छीन लेगा, अत्यंत करुणा में भरकर छीनेगा, स्नेह में व्यामोह में तो दे देगा, अपना बेटा है चलो मिठाई देते हैं, दे दिया, लेकिन वो लेकर मिठाई खाने लगा, मान लो पिता को याद नहीं हो और बेटा को मिठाई दे दिया, खाने लगा, तब तक मांग, अरे आप मिठाई दे दिए, आपको पता नहीं है इसको रोग है, मिठाई खाने से बढ़ेगा, अरे हाँ तब छीन लिया, अरे नहीं नहीं नहीं, लड़का रोने लगा फिर भी छीन लेगा, तो क्या उस बाप को दत्ता पहाड़ कहेंगे? नहीं, विशेष करुणा कहेंगे। इसी प्रकार आपने बलि को संपत्ति दे दिया, लेकिन यह बलि जब अहंकार में भरकर इंद्र आदि देवताओं का अपमान करने लगा, तब आपने इनका धन छीन लिया। बहुत अच्छा किए, वास्तव में आपकी करुणा है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। बतलाइए, साधारण मानव मस्तिष्क का विषय है कि धन छीन ले और उनकी प्रशंसा किया जाए? अगर कोई अपना संबंधी इस तरह से दुखी हो तो और टेंशन में बढ़कर उसके तरफ से लोग लड़ने आ जाएंगे। तुम कौन होते हो छीनने वाला? इस तरह से बेचारा परिश्रम करके कमाया है, यज्ञ किया, तपस्या किया, धन प्राप्त किया, और तुम ठीक से भिखमंगी करके आया, छोटा पैर लेकर बड़ा बढ़ा लिया। असुरों जैसा क्रोध होगा, लेकिन देखिए असुरों का, असुर सेना नायक लोगों की मानसिकता देखिए, वो किस स्टैंडर्ड से सोचे और प्रहलाद किस स्टैंडर्ड से सोच रहे हैं। वे लोग क्या सोच रहे थे कि हमारे मालिक, हमारे स्वामी इस समय यज्ञ के लिए व्रत संकल्प ले लिए हैं, क्रोध नहीं करेंगे। ऐसे ही ये सत्यवादी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, साधु सेवी हैं, और देखिए इनके स्वभाव का नजायज फायदा ये उठा रहा है। ये ब्राह्मण भक्त है, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, इस बात का पता लगा लिया, इनके कमजोरी को पकड़ लिया, आ गया इनके पास और इनसे मांगने के लिए ऐसा नाटक किया। तीन डेग भूमि चाहिए, छोटा छोटा पैर लेकर आया और बढ़ाकर नाप लिया दो डेग में सब कुछ। वास्तव में हमारे स्वामी की ये दो तीन कमजोरी है। एक कमजोरी है कि वो ब्राह्मण भक्त है, दूसरा कमजोरी है कि वो सत्यवादी है, तीसरा कमजोरी है कि यज्ञ में अभी दीक्षा ले लिए हैं, अब तो और नहीं झूठ बोलेंगे न क्रोध करेंगे। इस कमजोरी का नजायज फायदा ये उठा लिया, ब्राह्मण वेश में आया। तब दूसरे असुर कहते ब्राह्मण थोड़े है, अधम ब्राह्मण भी नहीं है, ये तो विष्णु है। मान लीजिए ब्राह्मण है और अपने पोजीशन से गिर चुका है, अधम है, तो उसको भी लोग आदर नहीं करते। नहीं, अधम भी नहीं, अधम ब्राह्मण भी नहीं है, यह तो विष्णु है। मायाविनाम बर, मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु, देखे नहीं कैसा ड्रामा किया, छोटा पैर लेकर आया और बढ़ा कर नाप लिया, ये विष्णु है। तब फिर असुर लोग मीटिंग करते, तो करना क्या चाहिए इसके साथ, करना क्या चाहिए? अपने नमक का शरीयत मानना चाहिए, जिस स्वामी का हम लोग नमक खाए हैं उनके बदले में कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि बिना स्वामी के सलाह के इस पर चढ़ाई कर देना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए और इसको जान से मार देना चाहिए। यह है असुरों का विचार, कुछ भी नहीं सोचते कि भगवान है, इनके अंदर दया है, ये सबके मालिक है, सर्व समर्थ है, हम इनसे नहीं लड़ सकते, कोई विचार नहीं, बस तुरंत चढ़ाई किए, एकदम दौड़ गए हथियार लेकर। और इधर प्रहलाद महाराज उनके व्यवहार को किस रूप में ले रहे हैं कि हे प्रभु, यतः यतः माने संयत होकर विद्वान व्यक्ति भी जिन संपत्तियों को प्राप्त करके मोहित हो जाता है, बड़े बड़े विद्वान भी, यया ही विद्वान अपि मोहयते जतः, जतः माने जिस धन से, तत उस संपत्ति से कौन व्यक्ति आत्मनोगति, कौन व्यक्ति उससे सफलता प्राप्त करना चाहेगा, अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान सकता है? नहीं जान सकता। विद्वान भी मोहित होता है, अर्थात कोई नहीं, यह अर्थ है। इस विषय में आप पर दत्ता पहाड़ रूप दोष नहीं लगेगा प्रभु, आप दिए और छीन लिए, तो इसी के बदले में उदाहरण देते हैं, इसी के लिए कि जिस प्रकार पुत्र को मिठाई देकर स्नेहवान पिता अनिष्ट की आशंका से फिर छीन लेता है, वैसे ही आपका यह लेना है, आपने कृपा करके ले लिया, अर्थात आप बलि का संपत्ति लेकर बहुत बड़ा उपकार किए हैं, यह भाव है। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहा है यह भाव है, प्रभु आप बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्यानु श्रेणवतो राजन प्रहलादस्य कृतांजलि है। हिरण्यगर्भो भगवान उवाच मधुसूदनम। जिस समय प्रहलाद महाराज अभी बोल रहे थे, बोलने वालों का तांता लग गया भगवान के सामने। अभी प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, बोलना अभी बंद नहीं किए हैं, तब तक उसी समय प्रहलाद जी अंजलि बांध कर अभी खड़े हैं। तस्यानु श्रेणवतो राजन प्रहलादस्य कृतांजलि है, अभी हाथ जोड़कर जो भगवान के सामने खड़े हैं, वो हाथ को हटाए नहीं, साइड में नहीं गए, तब तक उनके सामने हिरण्यगर्भ भगवान वाच मधुसूदन। हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी मधुसूदनम वाच, भगवान मधुसूदन वामन देव से कुछ कहना चाहे। अभी बोलना बंद नहीं किए हैं, तब तक दूसरा वक्ता आ जाए और बड़ा, तब तो छोटे को साइड देना पड़ेगा ना। तो अब ब्रह्मा जी आ गए तो अब प्रहलाद महाराज साइड में हो गए, अब क्या करेंगे। ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, कह ले। तस्य प्रहलादस्य अनुश्रिणवतो वाचेति किंचित वक्तुम प्रवृत्त इत्यर्थ। यह वाचक अर्थ है, मधुसूदनम वाच, ब्रह्मा जी बोलने लगे। श्लोक में तो ऐसा पता चलता है कि हिरण्यगर्भो भगवान वाच मधुसूदनम, भगवान ब्रह्मा मधुसूदनम, मधुसूदन से श्री कृष्ण से वामन देव है, लेकिन उनको मधुसूदन कहा जा रहा है, वामन देव के लिए मधुसूदनम है। वामन देव से बोलने लगे वाच। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ वाच का अर्थ यह है प्रहलादस्य अनुश्रिणवत, प्रहलाद के सुनते सुनते वाचेति, वाचेति का अर्थ है किंचित वक्तुम प्रवृत्त इत्यर्थ, कुछ बोलने की इच्छा से खड़ा हो गए। बोले अभी नहीं, अभी ब्रह्मा जी बोलने के लिए आ गए सामने। अच्छा, अभी ब्रह्मा जी बोलने के लिए आते हैं, तब तक तीसरा वक्ता, बद्धम वीक्ष पतिम साध्वी तत्पत्नी भय बिहवला प्रांजलि प्रणतोपेन्द्रम बभासे वांगमुखी नृप। तब तक बद्धम वीक्ष पतिम साध्वी, अपने पति को बंधे हुए देखकर वह साध्वी कौन, तो तत्पत्नी, बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली भय बिहवला, भय से कांपते हुए प्राणजलि एकदम हाथ जोड़कर प्रणतोपेन्द्र भगवान के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। वहीं साइड में प्रहलाद महाराज हैं, ब्रह्मा जी हैं, तब तक विंध्यावली आ गई और आकर भगवान के चरणों में भयभीत होकर कांप रही है, आंख में आंसू है, हाथ जोड़ ली अवांग मुखी, अशिष्ट व्यवहार नहीं की, आई भय से कांपते हुए लेकिन मुंह नीचा करके भगवान अवांग मुखी उपेन्द्रम बभासे, मुंह नीचा करके भगवान वामन से बोलने लगी। तो विंध्यावली बोलने लगी, इसका मतलब कि ब्रह्मा जी भी साइड हो गए, आ गई तो देखिए शिष्टाचार, स्त्री है, बोलना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, हाँ ठीक है बोल लो। ब्रह्मा जी चालू किए बोलना लेकिन नहीं बोल पाए, हट गए और विंध्यावली बोलने लगी। विंध्यावली रुवाच, क्रीडार्थमात्मन इदम ति जगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधयो परईश कुरियो करतु प्रभोस्तव किमश्यत आवहंती त्यक्त ह्रियस्तदवरोपित कर्त्रिवादः। विंध्यावली कहती है कि हे ईश, हे प्रभो, आत्मनः क्रीडार्थ इदम ति जगत कृतम, हे प्रभो, आपने अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी आनंद के लिए, अपने क्रीड़ा के लिए संपूर्ण जगत को रचा है। हे प्रभो, आपने इस जगत की रचना अपने आनंद के लिए किया है, आत्मनः क्रीड़ार्थ, अपने खेल के लिए, आपका यह क्रीड़ा स्थान है, खेलने का स्थान है, आपने इस जगत की रचना किया है। अपरः कुधिया तत्र स्वाम्यम तुकुरियु, और दूसरे मूर्ख लोग, दुर्बुद्धि लोग अपने को इस जगत का मालिक मानने लगते हैं। प्रभु तव अस्मत कर्तु, आप ही वास्तव में जगत के कर्ता हैं। त्वत कर्तिवादा आरोपितः ते त्यक्त ह्रिय किम आवहन्ति, आपके माया से मोहित हुए अपने को झूठ मूठ का स्वामी मानने वाले निर्लज लोग आपको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। एक विचार है, एक नीति है कि कोई समर्थ व्यक्ति एकदम किसी पर क्रोधित हो जाए, बहुत बलवान व्यक्ति, और पकड़ ले मारने के लिए, के उससे संबंधित व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि उसका प्रतिकार करे, नहीं। अगर प्रतिकार करता है, किसी लड़के को गलती में पकड़कर कोई बलवान व्यक्ति पीटना चालू कर दे, तो उसके संबंधी, उसके पिता या भाई अगर उसको बचाने के लिए प्रतिकार करेगा तो क्या होगा, वो बलवान उसको तो पीट ही रहा है, बचाने वाला को भी पीटेगा, क्योंकि बलवान है, समर्थ है, जो बचाने आएगा वो भी पीटा जाएगा। तब चलाकी क्या है, बुद्धिमानी क्या है, कि एक नीति का अवलंबन लेना चाहिए। वास्तव में ठीक कर रहे हैं, मारिए इसको, ये बदमाश है, पीटिए पीटिए। जब ऐसी बात कह देते हैं तो कम से कम उसके गार्जियन के प्रति अब क्रोध नहीं होता है, क्रोध शांत हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि गलती किया है, नहीं और पीटिए ना, ऐसा कह दे अगर कोई तो अब पीटना छोड़ देगा, वो समझ जाएगा कि ये गलती किया है और इसका गार्जियन भी इसको गलत कह रहा है। अगर फेवर किया जाए तो बलवान को क्रोध आ जाएगा। तो इस नीति का अवलंबन लेते हुए विंध्यावली कह रही है कि हे प्रभु, संपूर्ण जगत को आपने बनाया है अपनी आनंद के लिए, अपने लीला करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, कहां से दूसरा त्रिलोकी का स्वामी हो गया? इस तरह के लोग अपने को त्रिलोकी का स्वामी कहते हैं, झूठ मूठ के अपने को स्वामी कहते हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं? अब ठीक कर रहे हैं, लोका नाम एक मिश्वरम, कहने में लज्जा नहीं आई, तीनों लोगों का मालिक है, दे दो तीन डेग, है ताकत, ठीक कर रहे हैं। अभी तो आप बनवाए हैं ना, कुछ दो चार कोड़ा लगाइए, दो चार छड़ी, ठीक किए हैं। इनको कहने में शर्म नहीं आया, सारा जगत बनाए आप, आलोका नाम में मिश्रम हो गए। इस मूर्खता का यही दंड है प्रभु, यही दंड है, यही उचित दंड है, और इनको दंडित कीजिए। तो इस प्रकार पत्नी जब बोल देगी तब तो क्रोध शांत होगा ना। अथवा एक विशेष बात है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस जगत के स्वामी हैं, आप ही जगत की रचना किए हैं अपने क्रीड़ा के लिए, दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जितने लोग हैं सब आपके पाल्य हैं, जितने इस संसार के लोग हैं कोई स्वामी नहीं है, उनका पालन करना आपका कर्तव्य है। उनके कर्तव्य बोध को बतला रही है कि आप जगत के पालन करता है, संपूर्ण जगत की रचना जीवों के हित के लिए किए हैं, पालन पोषण के लिए किए हैं। ये बेचारा ज्ञान में कह दिया कि हम स्वामी हैं, तो ये आपका कर्तव्य नहीं है, आप पालन कीजिए, बांध दिए इसको, छोड़ दीजिए, आप कृपा करके इसको विमुच्य विमुच्य पालये थी, इसको छोड़िए, पालन कीजिए। त्रिजगत कर्तु प्रभो पालक कस्यास्यतः संघर्तु चेश्वरस्य तव अन्य किवा वहन्ति किम समर्पयन्ति। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के मालिक आप हैं, आप जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, दूसरा कौन आपको कुछ दे सकता है? त्वया वरोपितः कर्तृवादः कर्तारः स्वतंत्रा वयमिति बाद मात्रम अपि जेषां ते। आपको स्वामित्व से हटाकर अपने को लोग कर्ता मानने लगते हैं, ऐसे मूर्खों की कमी है। आप भी रियलाइजेशन कर चुके हैं भगवद गीता में, सारे जगत की रचना मैंने किया, कर्ता हम मिति मन्यते, दुनिया के लोग अपने को कर्ता मानते हैं, ये तो आपको पता है। अयम भाव लोकत्रयम् मयार्पितम् तृतीय पादाय देहम समर्पय प्रति श्रुतम मृतम करोत्मिति देहादिषु स्वाम्या विस्कारेण ब्रुवन अयम कुबुद्धि निर्लज्जश्च। कहते हैं कि सब कुछ दो डेग में नाप लिए, सारा जगत दो डेग में आप नाप लिए, अभी अपने शरीर को कह रहा है कि तीसरा नाप लीजिए, देखिए इसकी दुर्बुद्धि। जब आपके दो डेग में सारा जगत ही अट गया तो ये छोटा सा शरीर बस तीसरा डेग में हो जाएगा। इसको तृतीय पादाय देहम समर्पय प्रतिश्रुतम इति मृतम करोमि इति देहादिषु स्वाम्याविष्कारेण ब्रुवन। अपने को अब भी चेत नहीं है, देखिए मूर्खता की भी सीमा हो गई। दो डेग में सब कुछ नाप लिए, इसके बाद भी इनको पता नहीं चल रहा है कि कौन स्वामी है। सारे जगत के आप स्वामी हैं, इनके देह के ये स्वामी हो गए। यह कह रहे हैं कि अभी हमारा देह बचा है, इसको नाप लीजिए, अभी भी मम नहीं गया है। ये देखिए इनका अहंकार, ये तीसरा पैर अपने देह पर अपने सिर पर रखने को कह रहे हैं, ये भी हद हो गया ज्ञान का। ये शरीर इनका है, सारा जगत आपका है, इसमें जितने प्राणी हैं उनके सारे शरीर सब कुछ आपका है, फिर भी ये निर्लज यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं कर रहा है कि आप तीसरा डेग मेरे सिर पर रख दीजिए। यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी, आप सबके स्वामी हैं, अतो मंद बुद्धि मेनम केवलम कृपया विमुच्य पालयेति। हे प्रभु, अब क्या करेंगे, जब इतनी बुद्धि ही नहीं है तो ऐसे मूर्ख का पालन करना आपका कर्तव्य है। अगर कुछ बुद्धि होता तो चलो क्रोध भी किया जाता कि जानबूझकर गलती कर रहा है, लेकिन समझ ही नहीं है तो क्या क्रोध करेंगे आप। कोई पागल कुछ कर रहा हो तो आदमी ध्यान नहीं देता है, कुछ बोल रहा है, कुछ गाली दे दिया, कुछ बकबक कर रहा है, तब लोग कह लेते हैं अरे चलो छोड़ दो ये मूर्ख है, पागल है, नहीं देख रहे हो, अरे ऐसे बोल रहा है, अरे यार चुप रह पागल है। ऐसे लोग कहते हैं तुम भी पागल हो गया क्या, पागल है ना, उस क्या बोल रहा है क्या कह रहा है उसको कुछ पता नहीं है। तो उसी मूड में कह रही है कि प्रभु यह तो पागल है ही, आप भी बस इसके पीछे पड़ गए, आपका कर्तव्य है पालन करना। तो इतना कह करके विंध्यावली साइड में हुई, तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी तो लाइन में थे, कैसे आना नहीं था, वो तो वही खड़े ही थे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हित सर्वस्वम नायम अरहत निग्रहम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भूत भावन, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, हे भूतेश्वर, आपका यह कर्तव्य नहीं है जो कर रहे हैं। अब आरोप पर आरोप भगवान पर हो रहा है। कह रहे हैं कि हे भूत भावन, सारे जगत में यही प्रसिद्धि है कि आप जीवों का पालन करते हैं, आप जीवों के ईश्वर हैं, देव देव जगन्मय, हे देवाधिदेव शिव ब्रह्मा, हमारे जैसे लोग आपकी आराधना करते हैं। देव का अर्थ होता है पूज्य, और देव देव का अर्थ देवों के द्वारा पूज्य, देव देव का अर्थ है देवताओं के द्वारा जिनकी आराधना की जाती है, देवाधिदेव देवताओं के भी आराध्य। देव जितने पूज्य लोग हैं, शिव ब्रह्मा वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनके द्वारा आपकी आराधना होती है। जगन्मय आप जगत स्वरूप हैं प्रभु, एनम मुंच अब आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको खुलवा दीजिए। क्यों, अभी तीसरा डेग बाकी है, कह रहे हैं खोल दीजिए, जब तक वसूल नहीं लूंगा तब तक नहीं खोलूंगा। अगर भगवान मानो इस तरह कहे कि ये तीन डेग देने को कहा था ना, अभी तो दो डेग वसूल हुआ, तीसरा बाकी है। जब कोई ऋण वसूलने के लिए सरकार चलती है तो व्यक्ति इधर उधर भागता है तो उसको पकड़ कर अरेस्ट करती है, जब तक नहीं दे देगा तब तक बंद रखेंगे। तो यह अभी कहा है देने को तीन डेग और दो डेग वसूल हुआ, तीसरा पूरा होगा तब ना। कहते हृत सर्वस्वम, अरे आप सब कुछ ले लिए, क्या छोड़े हैं कि अब देगा, सब छीन लिए। अयम निग्रहम न अरहति, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है, जो शक्ति सामर्थ्य दे दिया। मान लीजिए किसी का लोन है सरकार के ऊपर तो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है, इतना बढ़ गया कि उसके पास उतनी देने की प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, तब सरकार क्या करेगी, माफ कर देना पड़ेगा, चलो जो है वो दे दो। तो जो है वो दे ही दिया तो अब क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, अब दंड का पात्र नहीं है। तद एवं प्रहलादस्य विंध्यावलेश्च परमार्थोक्त्या प्रसन्नो हरिः। भगवान तो प्रहलाद की बात सुनकर ही गदगद हैं कि आप अच्छा किए, और ऊपर से विंध्यावली कह दिए तो और प्रसन्न है। सिद्धा स्वामी कह रहे हैं ब्रह्मा तु लोक दृष्टि व विज्ञापयति भूत भावनेति त्रिभि। तीन श्लोक में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अब भगवान उनको भी सुनने लगे। भगवान तो पहले से ही मूड बना लिए थे खोलने का, प्रहलाद महाराज की बात, विंध्यावली की बात सुनकर, लेकिन ब्रह्मा जी की भी बात सुनने लगे, चलो तुम भी बोल लो। तो अब ब्रह्मा जी तीन श्लोक में बोल रहे हैं, ये दंड का पात्र नहीं है। कृष्णा तेने न दत्ता भू लोका कर्म जिताश्च ये निवेदितम च सर्वस्वम आत्मा विक्लवया धिया। देखिए विंध्यावली के ठीक उल्टा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वो कह रही कि सारे जगत को आप बनाए हैं, कहां से स्वामी हो गया। अब ब्रह्मा जी कहे हैं कि ऐसे फोकट में इसका राज नहीं मिला है, इसने बेचारा कर्म किया है, कर्मा जितार्च कर्म से अर्जित किया है। अनेन ते कृष्णा भू, यह अपनी सारी भूमि, कौन भूमि, जे कर्म अर्जिता लोका, अपने पुण्य कर्मों से उपार्जित किया है जो धन संपत्ति, विश्व जीत जग करके इसने तपस्या किया है, त्याग किया है, धर्म का आचरण किया है, उचित उन्नत कर्म किया है, अपने कर्मों से अर्जित संपत्ति को आपको दे दिया, अपनी कमाई हुई संपत्ति दिया है, सारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले ब्रह्मा जी प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। अब विकलया धिया निवेदितम, आपको समर्पित कर दिया लेकिन इसकी बुद्धि घबराई नहीं, सब कुछ दे दिया, बुद्धि एकदम विचलित नहीं हुई आपको देने में, आनंद के साथ दे दिया, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ, अपनी धीरता में बना रहा, और इस स्थिति में भी आप इसको बांध कर रखे हैं, एकदम अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं, सब कुछ देने के बाद भी इसको बांध दिए। यत पादयोर षठधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतिं सपर्याम अप्युतमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकिम दासवान विकलौ मना कथमार्तिमृक्षेत। हे प्रभु, यत पादयोर असठधि सलिलम प्रदाय, अगर आपके चरणों में सच्चे हृदय से निष्कपट भाव से जल का अर्घ दिया जाए, थोड़ा सा जल आपके चरणों में दिया जाए, दुर्वांकुरैरपि सतिम सपर्याम विधाय, और केवल घास तीन का दुर्वा दल, थोड़ा सा जल और दुर्वा दल अगर कोई आपके चरणों में समर्पित करता है, सच्ची लगन से पूजा करता है, सतिम सपर्याम विधाय देता है, तो उत्तमम गतिम भजते, वह व्यक्ति उत्तम गति को प्राप्त करता है, वैकुंठ प्राप्त करता है। असौ इसने अब विकलो मना त्रिलोकिम दासवान कथम आत्मरिक्षेत, यह आपको त्रिलोकी का दान कर दिया बिना घबराहट के, एकदम निश्चल भाव में खड़ा होकर, फिर भी यह दुख का भागी है, कैसे दुख का भागी बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ देकर भी बांधा गया, तुलसी दल मात्रे न जलस्य छुलके नवा, प्रसिद्ध बात है कि तुलसी दल और थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दुर्वा देने के बाद आप उस भक्त के कृत दास हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेणा जलस्य छुलके नवा विक्रीडतम तदा तस्मयी, भक्तेभ्यो भक्त वत्सल विक्रीडत तदा तस्मयी, बिक जाते हैं, एकदम कृत दास हो जाते हैं। थोड़ा सा तुलसी के पत्ता और जल देने वाला व्यक्ति आपको खरीद लेता है, आप बिक जाते हैं। ऐसे भक्त जो तुलसी दल और जल से आपकी आराधना करता है वो आपको खरीद लेता है। अद्वैताचार्य ने गंगा जल और तुलसी पर गोलोक बिहारी को खींच लाया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैताचार्य ने शास्त्रीय विचार बड़ा मंथन के साथ किया कि उस प्रभु को, गोलोक बिहारी को, इस घोर कलयुग में जहां लोग अज्ञान में पाप में रत हैं, इनको कैसे कृष्ण के ओर मोड़ा जाए, किसी व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है बिना भगवान के, लेकिन भगवान के अवतार का टाइम नहीं है, कैसे भगवान आएंगे, कठिन काम है। तो इस पर जब विचार करने लगे तो कहीं एक उपाय है कि वे जल से और तुलसी दल से बिक जाते हैं, तो बिक जाएंगे जब कृत दास होंगे तो स्वामी जो कहेगा वो करेंगे, तो अब चलो वही करता हूं। गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर आराधना चालू कर दिए, एकदम एक निष्ठ होकर कि चलो इस श्लोक को सिद्ध करता हूँ, तुलसी दल मात्रे न जले न चुलके नवा, और उसी सिद्धांत पर अद्वैताचार्य जी भगवान की आराधना किए और हुंकार से पुकारे, प्रभु मैं आपसे केवल यही चाहता हूँ कि आइए और इन जीवों का उद्धार कीजिए। भगवान विवश हो गए और आ गए इस धाम में, आ गए, अवतार ले लिए। तो उसी को याद कर रहे हैं ब्रह्मा जी की, हे प्रभु, यत पादयोर असठधि सलिलम प्रदाय, कोई असठधि सच्चे हृदय से, कपट से नहीं, सठता से नहीं, ईमानदारी से यदि आपके चरणों में जल दे दे और दुर्वा दल दे दे, सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि सतिम सपर्याम विधाय, अगर कोई सच्ची लगन से आपकी पूजा करता है तो उत्तमम गतिम भजते, उत्तम गति को प्राप्त करता है। और असौ, असौ मतलब यह बलि, इस बलि ने अविकल मना, कोई घबराहट से नहीं, आसानी से, धीरता से त्रिलोकिम दासवान, सारे त्रिलोकी को दे दिया, कथम आतिरिक्षेत, फिर ये दुख क्यों सह रहा है, ये न्याय है, ऐसा करना क्या उचित है, आपने इसके साथ जो व्यवहार किया है वो उचित नहीं है, ये बंधन के योग्य नहीं है। कैमुत्त न्याय से चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिसने त्रिलोकी दिया उसको क्या देंगे, थोड़ा सा जल और दुर्वा दल तुलसी देने से तो आप दास हो जाते हैं, खरीदा हुआ नौकर, और जो सब कुछ दे दिया उसको क्या देंगे। यह बलि तो सर्वस्व दान कर लिया, फिर इसे क्यों बंधन का कष्ट दिया जा रहा है, इसको देने के लिए आपके पास कुछ है, हमारे समझ में नहीं है, उल्टे बांध दिए, इसके मुक्ति में क्या संशय है, क्यों बांध कर रखे हैं। ब्रह्मा जी को अधिकार है पूछने का, पूछ रहे हैं क्यों बांध रहे हैं। भगवान के व्यवहार पर ब्रह्मा जी के चारों माथा चकरा जाता है कई बार, एक बार नहीं। जब पुतना के उद्धार के घटना सुने ब्रह्मा जी तो कहे कि बाप रे बाप, और जब गोपों का समर्पण देखे, सहज सौहार्द देखे, अपना जूठा देने में भी संकोच नहीं है, अरे कन्हैया यार बड़ा मधुर है ये तो दो, तो अरे खा गया, अरे यार दो, तो अपने मुंह से निकाल कर देता है, कोई संकोच नहीं, और भगवान का लाल टपक जाता है उस जूठा को लेकर। ब्रह्मा जी के चारों माथा चकरा गया देखकर, बाप रे, बड़े बड़े ब्राह्मण कितनी पवित्रता से अपने को पवित्र करके, नहा धोकर वैदिक मंत्रों से शुद्धि करके इनका अर्चन करते हैं, और ये देखो गवार अहिर के बच्चे, न नहाना है न धोना है, कोई पवित्रता नहीं, और ये जूठा दे रहे हैं इनके लिए, ललच रहे हैं। बुद्धि चकरा गई। जब भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किए और एक साल के बाद पता चला कि अरे हमारे चुराने में कोई दम नहीं है, बछड़े चुराए, बच्चों को चुराए, और एक दूसरा सेठ उसी तरह काम कर रहा है। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ओरिजिनल सेठ कौन है, मैं जो छिपा कर रखा हूं वो है कि ये है, जहां छिपाए थे उसको देखे और बाहर देखते हैं तो हू बहू है। तो फिर बहुत देर तक विचार करते रहे तो देखते हैं कि जितने बछड़े और जितने गोप सखा थे सब विष्णु रूप। तब ब्रह्मा को होश, अरे बाप रे, सर्वम विष्णुमयम जगत, इस श्रुति का वाक्य सत्य हो गया। तब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में क्षमा याचना करते हुए लंबी स्तुति करते हैं, दशम स्कंद के 14वें अध्याय में। तो उसी में एक श्लोक में कहते हैं कि हे प्रभु, हम जब आपके व्यवहार पर विचार करते हैं तो चकित हो जाते हैं कि आप जब इन असुरों को, इस पुतना को, बक्कासुर को, आघासुर को जब उत्तम गति देते हैं, वैकुंठ दे देते हैं, तो इन ब्रजवासियों को क्या देंगे जो आपके प्रति सहज सौहार्द में लगे हुए हैं, गोपों को क्या देंगे, गोपियों को क्या देंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि निश्चित रूप से अब आपके पास कुछ नहीं है देने का, कुछ है ही नहीं, वैकुंठ तो असुरों को दे दिए, इनको क्या देंगे, दे नहीं पाएंगे, आप जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे, ऋणी, आपके पास कोई बसर नहीं है कि इनका ऋण चुका दें, आप ऋणी रहेंगे। और भगवान स्वीकार भी करते हैं गोपियों से कि मैं ब्रह्मा के आयु पाकर भी हे देवियों आपके उपकार का बदला चुकाना चाहूं तो संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी जिस निर्णय पर आए वास्तव में वही सही निर्णय है। तो इस प्रकार हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं, बलि सब कुछ दे दिया फिर भी बांध दिए। इस प्रकार तब भगवान बोलते हैं, अब भगवान बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर भगवान का भी प्रवचन है। श्री भगवान वाच, ब्रह्मन यमनुगृहिणामि यद विशो विधुनो मेहम यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चाव मन्यते। हे ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। धन छीन लेते हैं तो हाँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तो मेरा और दूसरे लोगों का अपमान करता है। अहम यम अनुगृहिणामि, मैं जिस पर कृपा करता हूँ तत् विष विधनों में उसका धन छीनता हूँ। क्यों धन छीनते हैं कि जत जिससे, जिस धन से पुरुष मद, पुरुष अहंकार में हो जाता है, और माम च लोकम अवमन्यते, मेरा और लोगों का अपमान करता है, इसलिए मैं उसका धन छीनता हूँ। जिस धन के कारण उसको मद हो जाता है, मेरा और अन्य लोगों का अपमान करता है, उस धन को पहले छीनता हूँ। ब्रह्मा जी आप समझ नहीं रहे हैं कि बलि पर मैं कैसा अनुग्रह किया हूँ। यदा कदाचित जीवात्मा संसरण निज कर्म भी नाना जोनिश्व निशो यम पौरुषिम गति मा ब्रजेत। यह असमर्थ जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक जोनियों में भटकता है।
यदा कदाचित जीवात्मा संसरण निज कर्म भी अपने कर्मों के द्वारा वह संसार में चक्कर मारता है, नाना जोनिशु अनेक जोनियों में जाता है, नाना जोनिशु संसरण यदा कदाचित पौरुषिम गतिम आव्रजेत। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। बलि के ऊपर मेरी कितनी बड़ी कृपा है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। जीवों की स्थिति यह है कि अपने कर्मों के कारण फंसते हैं और कर्मों के कारण विविध जोनि में, कभी कुत्ता में, कभी सुअर में, कभी गाय में, कभी भैंस में, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, कभी भारत में, कभी पाकिस्तान में जन्म लेते रहते हैं अपने कर्मों के बल से। उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जानते हो मेरी कृपा है, मेरा अनुग्रह है कि मनुष्य शरीर मिलता है। यदा कदाचित पौरुषिम गतिम आव्रजत, यदा कदा अचानक उस पर जब मेरी दृष्टि पड़ती है, मैं कृपा करता हूँ, तब मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। बिना मेरे कृपा के किसी पुरुषार्थ का बल नहीं है मनुष्य शरीर, यह मनुष्य शरीर मेरे कृपा से प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी भक्ति प्राप्त होना तो एकदम भगवान की कृपा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। तो ये मनुष्य शरीर जब मिल जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि अगर वह मनुष्य शरीर ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो गया, उच्च कुल में जन्म मिल गया और खूब धनी परिवार में जन्म हो गया, कुल भी उच्च और धन भी है और फिर पढ़ लिख भी लिया, PhD डिग्री मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, मान मिल गया, तब जानते हैं क्या होता है ब्रह्मा जी, व्यक्ति जड़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। और ऐसी अवस्था प्राप्त करके भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, उस पर मेरी विशेष अनुग्रह है। जन्म कर्म वयोरूप विद्या ऐश्वर्य धनादि यद यस्य अनुभवे स्तंभ तत्रायम मदनुग्रह। यदि कोई उत्तम कुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ कर्म किया, जीवावस्था प्राप्त किया, सौंदर्य है, खूब सुंदर रूप है, विद्या है, प्रभुत्व है, पद पोजीशन है, धन आदि है, तो निश्चित रूप से अहंकार बढ़ जाता है। अगर ये सब प्राप्त होने के बाद अगर अहंकार न हो, तो समझना चाहिए कि मेरी बहुत बड़ी कृपा है। जन्म कर्म वयो रूप विद्या स्वर्ग धनादि भी एक एक पॉइंट विचारणीय है। जानते हैं जन्म के कारण कितना स्तंभ छाता है, स्तंभ मन जड़ता, स्तंभ का अर्थ होता है पीलर, एकदम जड़ हो जाता है, स्तंभता आती है, जड़ता आ जाती है जन्म के कारण। अगर किसी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति को उपदेश करने जाए, चल हट, पता नहीं किस जाति का, मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूं, मुझे सिखाने चला है, ब्राह्मण हो जाना मूर्खता का जड़ हो जाता है, बस अब कुछ नहीं समझने देगा, तुरंत ये भावना भरी रहती किस जाति का है, इसके व्यवहार से लगता है कि ब्राह्मण नहीं है। क्या हो गया ब्राह्मण नहीं है, तो भजन कर रहा है, जप कर रहा है, शुद्ध आचरण कर रहा है, तुम ब्राह्मण हो गए तो सारा क्वालिफिकेशन आ गया, जड़ता आ जाती है, अपने आचरण पर ध्यान नहीं होता। हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो तो कर्तव्य का बोध होना चाहिए ना, बस जाति के अहंकार में फूले रहते हैं। अरे हरे कृष्ण वालों को कोई जाति पाति का भरोसा नहीं है, पता नहीं सभी जाति के लोग एक साथ खाते हैं, क्या गलती करते हैं, वो क्या खाते हैं, बैठकर होटल में मांस खाते हैं, शराब पीते हैं तुम्हारे जैसा, शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद खाते हैं, इस पर विचार किया कभी, नहीं फुर्सत ही नहीं। ब्राह्मणत्व का अहंकार उसके अज्ञान को इतना जबरदस्त बढ़ा देता है कि सोचने नहीं देता कि क्या करना चाहिए। और उसके ऊपर श्रेष्ठ कर्म कुछ कर दिया अपने जीवन में, श्रेष्ठ कर्म माने स्कूल कॉलेज बनवा दिया, कोई बहुत बड़ा धर्मशाला, कोई प्यायू या कुछ कर दिया, तब देखिए उसका अहंकार, चले हो माला उठाकर जपने, कुछ करना है ना धरना है, जानते हो मैं क्या क्या किया हूँ, इतना स्कूल बनाया, मैं इतना दान दिया हूँ, वहाँ हॉस्पिटल खुलवाया हूँ, वहाँ ऐसा किया हूँ, कर्म कर दिया, अब उसको भजन नहीं करने देगा वो कर्म, कुछ उसके द्वारा अच्छा काम हो गया, जन्म कर्म, कर्म कुछ हो गया श्रेष्ठ कर्म, तो श्रेष्ठ कर्म उसको जड़ बना देता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयक्षति, भक्ति से, स्नेह से, आत्मीयता से जो व्यक्ति करता है, देता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, अहंकार से नहीं।
मैंने किया। कोई मंदिर में दान दिया तो बड़ा मोटा लिखना चाहिए, उसके पत्थर लगाना चाहिए, कोई आते ही पढ़ ले कि इसने दिया है। इस तरह की अज्ञान छा जाता है कर्म के रिजल्ट से, कर्म किया। और बया माने अवस्था, अगर वो धीरे धीरे 70 वर्ष पार कर दिया, बाल पक गया, उम्र बढ़ गया, तब देखिए उसका अहंकार। अगर कोई 16-17 वर्ष का 20 वर्ष का लड़का कहे बाबा बीड़ी मत पीजिए, क्यों? ठीक नहीं है, ये शास्त्र में निषेध है, 4 महापाप है, चल हट, तुम्हारे जैसे नाती पोते हमारे हैं, तो मुझको उपदेश करने चला है। बाप रे बाप, 70 वर्ष के हो जाने से ज्यादा क्वालिफाइड हो गया। यह है उम्र का अहंकार, वय। अगर 18-20 वर्ष के कोई डॉक्टर हो और बाबा जी बीमार हो जाए 70 वर्ष के बूढ़ा, डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ है, अब विश्वास कर लेंगे, कहेगा आपको 3 इंजेक्शन लगेगा, ठीक है, अब स्वीकार कर लेगा उनके बात को, अब आपको तमाकू नहीं खाना है, तमाकू खाएंगे बीड़ी पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है डॉक्टर साहब हम नहीं पिएंगे। अगर कोई साधु कहता है कि ये बीड़ी पीना पाप है, नरक जाओगे, चलो उपदेश करने चले हो, नहीं सुनता है, यह उम्र का अहंकार है। जन्म कर्म वयो और रूप, रूप का सुंदर शरीर मिल गया तो अब किसी को कुछ समझता ही नहीं। विद्या, अगर कहीं पढ़ लिख गया, कुछ डिग्री ले लिया, डिग्री डिप्लोमा, तब तो पूछिए मत, वो विद्या प्रभुपाद जी के शब्दों में अविद्या है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है प्रभुत्व, पद पोजीशन, लेकिन ब्रह्मा जी अगर ये सब पाने पर, उत्तम वंश में जन्म पाने पर, सुंदर कर्म करने पर, उम्र बढ़ने के बाद भी, या रूप हो, विद्या हो, ऐश्वर्य हो, पद पोजीशन हो, अगर इसके अंदर अहंकार नहीं है तो समझना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर मेरी विशेष कृपा है। यद यस्य न भवे स्तंभ, ये सब प्राप्त करने के बाद भी स्तंभता नहीं, जड़ता नहीं, तो तत्रायम मदनुग्रह, तत्र अयम मदनुग्रह, उस व्यक्ति के प्रति मेरी कृपा है। तो इतना लंबा प्रवचन करके भगवान कहना क्या चाहते हैं कि ब्रह्मा जी देख लिए मेरे इस भक्त बलि के महानता को। मानस स्तंभ निमिता नाम जन्मादी नाम समन्तत सर्वश्रेय प्रतिपा नाम हंत मुहिये न मत पर। ये कुलीनता आदि बहुत से कारण है अहंकार के, लेकिन जो अभिमान और जड़ता उत्पन्न करने वाला है, मनुष्य को समस्त कल्याण के साधनों से रोक देता है। जन्म आदि नाम समन्तत निमिता नाम, जो कुलीनता आदि कारण है, मानस स्तंभ सर्वश्रेय प्रतिपा नाम, ये जो अभिमान आदि जो जड़ता उत्पन्न करने वाला है, मनुष्य के समस्त कल्याण को रोकने वाला है, ब्रेकर है। ये जितने साधन को बतलाया, जन्म आदि जो उपलब्धियां है, वो ब्रेकर का काम करता है, रोक देता है। हंत मत पर न मुह्यते, अहो मेरे जो परायण होते हैं इन सब से मोहित नहीं होते, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नहीं मोहित होते हैं। जो मेरे भक्त हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखिए, अभी आपके सामने प्रज्वल उदाहरण है, एकदम ज्वलंत उदाहरण, बलि। एस दान दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धन अजय सिद्ध अजयाम वायाम सिद्धन अपि न मुह्यति। ये देखिए, एस उंगली से बतला रहे भगवान, बंधे हुए बलि बंधे हैं बेचारे, एकदम सिर झुकाए हैं, तो भगवान संबोधन करते हुए कह रहे, देखिए ऐसा इनको देखिए। तो ब्रह्मा जी तो बिना देखे थोड़े बोल रहे हैं, देखकर बोल रहे हैं, कहते हैं देखिए ऐसा दानव दैत्यानाम, यह दानव और दैत्यों में अग्रगणी है, सबसे श्रेष्ठ है, जितने दैत्य और दानव है सबके सिरमौर अग्रगणी, सर्वश्रेष्ठ है, कीर्ति वर्धन, यह उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। अरे आज तो बलि और प्रहलाद को असुर कहने में संकोच हो रहा है, लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े भक्त असुर कुल में क्यों जन्मे, यही तो बात है, असुर कुल की कीर्ति ध्वजा को फैला दिए, कोई नहीं कह सकता कि असुर कुल कलंकित है, जिस वंश में प्रहलाद और बलि जैसे महाभागवत जन्म लिए। इस कीर्ति को, असुरों की कीर्ति ध्वजा को बढ़ाने वाले हैं, कीर्ति वर्धन, असुर कुल के कीर्ति को बढ़ा देने वाले हैं। अजयम मायाम अजय सिद्ध,
इसने उस माया पर विजय प्राप्त किया है जिसको जीतना बहुत कठिन है। जिस माया के विषय में मैंने भगवत गीता में कहा है, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी दैवी प्रकृति मेरी माया इतनी दुष्टर है कि उसको पार करना बहुत कठिन है। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरे शरण में आ जाएंगे उसको माया छोड़ देगी। तो ये व्यक्ति अजयम मायाम अजय सीत कहते हैं, यह माया जो सबके लिए कठिन है जीतना उसको जीत चुका है, इस पर कोई माया का प्रभाव नहीं है। क्या विशेषता है इसकी? भगवान कह रहे हैं सीदन अपि न मोहयति। ब्रह्मा जी देखिए जरा, सीदन अपि न मोहयति, ये दुख पर दुख देने जाने के बाद भी घबरा नहीं रहा है। दूसरे लोग घबरा गए, बलि नहीं घबरा रहे हैं। ब्रह्मा जी घबरा कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ दे दिया और इसको बनवा दिए। प्रहलाद महाराज कुछ बोल रहे हैं, विंध्यावली कुछ बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं, तस से मस नहीं हो रहा है। यह देखिए हमारे भक्त की विशेषता, देख रहे हैं आप, नहीं देखे हैं नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। छीण रिक्त चितोस्थानात छिप्तो बद्धस्य शत्रु भी ज्ञात भी च परित्यक्तो यातना यापित गुरुणा भर्षित सप्तो जहु सत्यम सुब्रत छलई रुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक। देखिए छीण रिक्त, छीण रिक्त इसका धन छीन लिया गया, दो डेग में सब कुछ नाप लिए, अस्थानाच्युत और त्रिलोकी का पद जो इंद्र पद था उससे नीचे उतार दिया गया, च्युत हो गया, राज पद से अलग हो गया। शत्रु भी छिप्त, और शत्रुओं ने इस पर बहुत से आक्षेप किए, बहुत कुछ बोला गया, मैंने बहुत बोला। शत्रु भी माने अपने विषय में कहते हैं कि मैं शत्रु के रूप में आया, मैंने इसको झूठा और दम भी क्या क्या बोला, मैं बहुत आक्षेप किया। और बद्ध चबद्ध, मैंने इसको बंधवा दिया। और ज्ञात भी परित्यक्त, इसके परिवार वाले गोतिया परिवार भी छोड़कर चले गए सूतल लोक में, कोई है नहीं, अकेला पड़ गया। यातनाम अनुयापित, इस प्रकार के इसको कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी, कितना डांट पड़ा। अरे सब तो सब गुरुणा भर्षित सब तो, अरे गुरु शुक्राचार्य भी नाराज हो गए, श्राप दे दिए। लेकिन जहु सत्यम न सुव्रत, लेकिन ये सुंदर व्रत दृढ़ व्रति सत्य प्रतिज्ञ बलि ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ा। जय जहु सत्यम न सुव्रत, यह सुंदर व्रत का पालन करने वाला वैष्णवाचार्य ये महाभागवत बलि अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। सब तो सब छलई रुक्तो मया धर्मो, मैं छल से इसके साथ व्यवहार किया, छल भरी कपटपूर्ण बातें किया। नायम त्यजति सत्यवाक, फिर भी यह धार्मिक, यह परम धार्मिक परम भागवत अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धर्मम न त्यजति अयम सत्यवाक, अयम सत्यवाक धर्मम न त्यजति, यह सत्यवादी सत्य प्रतिज्ञ अपने धर्म को नहीं छोड़ा। देख लिया आप, नहीं छोड़ा। इस प्रकार यह जो कहा कि मैं ब्राह्मण को दूंगा वो देने के लिए अब भी तैयार है, अपना जीवन देना चाहता है, इसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ फिर भी यह धर्म को नहीं छोड़ा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अच्छा प्रभु, यह तो सब कुछ किया है मैं सुन लिया, और आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप चाहते क्या हैं? बस ये सब कुछ दे दिया, इसकी सराहना कर रहे हैं, इसको बनवा दिए हैं, आगे क्या करेंगे? तब कहते हैं ऐसा में प्राप्त स्थानम, आप जान जाइए इसके साथ क्या होगा। ऐसा में प्राप्त स्थानम, यह वह स्थान प्राप्त करेगा, दुष्प्रापम अमरैरपि, दो देवताओं को भी प्राप्त करना कठिन है वो स्थान प्राप्त करेगा। देवता इसके सुख की तुलना नहीं करेंगे, देवताओं के लिए जो कठिन है दुष्प्रापम अमरैरपि, अमर अमर देवता, अमरई एक देवता नहीं, किसी भी देवता को यह मुअसर होने वाला नहीं है, चाहे वो देवराज इंद्र ही क्यों न हो, उनको यह मिलने वाला नहीं है, वह ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। सावर्णे अंतरस्यायम भवित्वेन्दो मदाश्रय, आने वाले सावर्णी मनवंतर में आठवें मनवंतर में अयम यह इंद्र बनेगा, इंद्र बनेगा, इंद्र तो अभी बना था, एक कौन बड़ी उपलब्धि मिल गई, वो तो इंद्र पद भी पर ही बैठा था ना, आप उसको मांग लिए फिर इंद्र बनाएंगे। कहते हैं नहीं नहीं, जरा ध्यान से सुनिए, मदाश्रय, मेरे आश्रय में रहकर इंद्र बनेगा, मैं इसका संरक्षक रहूंगा, उस पद पर आने पर भी अहंकार नहीं आने दूंगा, इसकी सर्व तरह से रक्षा करूंगा, मेरे आश्रय में रहेगा, मेरा समर्पित भक्त इंद्र बनेगा, फर्स्ट क्लास वैष्णवाचार्य इंद्र बनेगा। तो सावर्णी मनवंतर में इंद्र बनेगा, इसके पहले कहां जाएगा? अब तो इसका सब कुछ छीन लिए, इंद्र को देंगे, और तब तक किधर रहेगा? तो कहते हैं तावत सुतलम अध्यास्तम विश्वकर्मा विनिर्मितम, तब तक ये सूतल लोक में रहेगा। सूतल लोक में, सूतल तो नीचे है। तो कहते हैं नीचे पाताल आदि नीचे के लोक में जाएगा इतना बड़ा काम करके? कहते हैं नहीं नहीं, विश्वकर्मा विनिर्मितम, वहां स्पेशल विश्वकर्मा द्वारा व्यवस्था कर दिया गया है। अच्छा, फर्स्ट क्लास भवन बनाया गया है। और यही नहीं, यन्नाधयो व्याधयस्य क्लमस तंद्रा पराभव नोपसर्गा निवसताम समवंती ममेक्षया। कहते हैं कि उस सूतल लोक में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था की जाएगी। जत निवसताम, वहां निवास काल में, जब तक निवास काल में रहेंगे, तब मम इच्छया मेरी दृष्टि से वह सूतल लोक सुखमय बना रहेगा। न आधय व्याधय क्लम तंद्रा पराभव, वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं, न आधी है न व्याधी है। आधी कहते हैं शारीरिक दुख को, कोई सर्दी जुखाम बुखार, पेट में दर्द, घुटने में दर्द, आंख में दर्द, कमर में दर्द, ये सब नहीं होगा वहां। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं होगा वहां। मानसिक टेंशन होगी, पागलपन होगा, बहुत मानसिक रोग होगा, पागलखाना होगा। कहते ना ना व्याधय, न आदि है न व्याधि, कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई शारीरिक बीमारी नहीं, कोई क्लम नहीं, क्लमह नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई तंद्रा नहीं, कोई आलस नहीं, पराभव न कोई बाहरी भीतरी शत्रुओं से पराजय, कुछ नहीं है। और न उपसर्गा संभवंती, वहां किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, कोई हानि नहीं, केवल सुख है। ऐसा स्थान सूतल लोक व्यवस्था किया गया है। अच्छा, मेरी दृष्टि वहां रहेगी। इतना कहकर कहते हैं बलि से, बलि को संबोधन करते हैं भगवान ब्रह्मा जी को सुनाते हुए, इंद्र से न महाराज जाहि भो भद्रमस्तु ते सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञात भी परिवारित। भो महाराज इंद्रसेन, हे महाराज इंद्रसेन, बलि को इंद्र कहकर संबोधन करते हैं, ते भद्रम अस्तु, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ते भद्रम अस्तु, आपका कल्याण हो। सुन रहे हैं ब्रह्मा जी, सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज, सुन रहे हैं शुक्राचार्य भी, सुन रहे हैं बड़े बड़े विश्व के अथॉरिटी बैठे हुए हैं वहां, सुन रहे हैं। और उनको सुनाते हुए कहते हैं, हे इंद्रसेन, आपका कल्याण हो, आप जाइए सूतलम जाही, माने कहते हैं आप सूतल लोक जाइए। सूतल लोक वह अकेले? तो कहते नहीं, ज्ञात भी परिवारित, सारे परिवार गोतिया परिवार को लेकर जाइए। सूतलम जाही, वहां पर जाइए सबको लेकर, सूतल जाइए। तो कहते स्वर्ग भी प्रार्थ्य, वह स्वर्ग के लिए भी प्रार्थनीय है, स्वर्ग में इंद्र के पद पर बैठने वाले लोग भी तरसते हैं सूतल लोक के संपत्ति के सामने, चाहते हैं, मुयस्सर नहीं है उनके जीवन में, वो मुयस्सर नहीं, मिलने वाला नहीं है, वो केवल लालसा करते हैं, आप वहां जाइए। अब बलि महाराज का मन खुश नहीं हुआ कि फिर यही असुर, यही समाज, इन्हीं लोगों के साथ जाना है, यही बड़ा भारी गिफ्ट मिल गया इनाम, कि फिर असुरों के समाज, फिर उसी तरह असत्संग, फिर उटपटांग बातें करेंगे। तब कहते हैं, न तम अभी भविष्यन्ति लोके सा किमुता परे, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, तच्छासनाति गतान दैत्या चक्रम में सुदैष्यति, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, बड़े बड़े लोकपाल भी हमें अब तुमको पराजित नहीं कर पाएंगे, कहीं युद्ध है और कोई लड़ाई टेंशन नहीं है, आप जाइए। अरे दूसरों की बात क्या कहें, आपके शासन, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दैत्य, ये असुर जानते हैं किस गति को प्राप्त करेंगे, चक्रम में सुदैष्यति, मेरा सुदर्शन चक्र टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। अगर कोई आपकी आज्ञा को नहीं माना, आप कहते हैं कि संकीर्तन होना चाहिए तो होना चाहिए, अगर कोई कहा कि ना विष्णु का भजन क्यों करेंगे तो साफ सुदर्शन चक्र वहां काम करेगा। जो आपकी आज्ञा का अतिगान करेगा, आपके अनुशासन का अतिक्रमण करेगा, कहने का मतलब कि आपके शासन का अतिक्रमण नहीं होगा, आप जो कहेंगे वही होगा, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। कहते हैं कि आपका सुदर्शन चक्र मेरा रक्षा करेगा इसलिए मैं चला जाऊं, आप चिंता मत कीजिए, आपके भजन में कोई बाधा नहीं होगा, आपको असत्संग नहीं मिलेगा। रक्षी से सर्वतो हम त्वम, मैं आपकी सब प्रकार से रक्षा करूंगा। सानुगम सब परिच्छदम सदा सन्निहितम वीरम तत्र माम द्रक्षते भवान, सब प्रकार के विघ्नों से आपको बचाऊंगा। हे वीर बलि, आप सदा सर्वदा मुझको देखोगे, मैं गेट कीपर के रूप में खड़ा रहूंगा, मैं आपके दरवान बनकर उस उत्तर लोक में रहूंगा, आप चलिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा, जिधर आपकी दृष्टि पड़ेगी उधर मैं दिखाई दूंगा। जय। इस प्रकार भगवान उपेंद्र वैकुंठ का वातावरण सुतल लोक में बना दिए। त्र हे वीर भवान तत्र सदा माम सन्निहतम द्रक्षते, हे वीर जहाँ तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वहीं मैं नजर आऊंगा। इस तरह की सुविधा भगवान प्रदान कर रहे हैं। आप मेरे वियोग के दुख नहीं सहेंगे, आपके मन में भाव है कि असुर समाज मिलेगा, भक्तों का समाज नहीं मिलेगा, क्या कृष्ण भावना वहाँ बचा रहेगा असुरों के समाज में? यह भक्त के सामने समस्या है ना कि मैं कहीं भी जन्म लूं कोई बात नहीं। वृत्रासुर कहते हैं कि संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, मैं अपने कर्मों के फल से कहीं भी किसी संसार के चक्र में घूमता रहूं, लेकिन हे नाथ ऐसे लोगों का संग न मत देना जो आपसे विमुख है, आपका भजन नहीं करते हैं। ममो तमश्लोक जनेश सख्यम, हे उत्तम श्लोक आपके भक्तों से मेरी दोस्ती हो और आपके विमुख लोगों का संग कभी न हो, चाहे मैं किसी जोनी में जाऊं कोई दिक्कत नहीं, मेरे कर्मों से किसी जोनी में भेज दो, लेकिन मुझको भक्तों का संग चाहिए। किसी जाति से मतलब नहीं, किसी शरीर से मतलब नहीं, भक्तों के संग से मतलब है। मुझको ऐसे लोगों का संग मत देना जो आपके भक्ति से बहिर्मुख है। तो इतना के बाद भी इनको लग रहा है कि दैत्यों के समाज में क्या कुछ न कुछ तो बाधा आएगी, कुछ न कुछ बाधा आएगी। तो कहते तत्र दानो दैत्यानाम संगात ते भाव आसुर, भगवान सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं। दानो दैत्यानाम संगात ते आसुर भाव, दैत्यों और दानवों के संसर्ग से कुछ असुर भाव तो आ ही जाएगा आप में भी, उनके संग करेंगे उनकी बात सुनेंगे तो कुछ तो बात आएगी, लेकिन घबराइए मत। दिष्टवा मदनु भावम वही सद्य कुंठो विनक्षति, तत्र मत अनुभावम दृष्टवा, वहां मेरा इतना भारी प्रभाव रहेगा कि सद्य कुंठ विनक्षति, तुरंत ही वो भाव दब जाएगा। यत किंचित असुरों की बात सुनने से कभी अनर्थ की बात मन में आ जाएगी, होता है ऐसे, साधु वैष्णव के जीवन में भी ऐसा होता रहता है, भजन करते हैं दिन रात तब तक असत संग कहीं ना कहीं हो ही जाता है, नहीं चाहने पर भी हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गलत बात सुनने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, तो कहते हैं होगा संसार है, लेकिन मेरे प्रभाव से वो भाव तुरंत दबकर नष्ट हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप सूतल लोक में जाइए। तो इस प्रकार भगवान मानो ब्रह्मा जी से बात करते करते भूल गए कि यहाँ ब्रह्मा कुछ कह रहे थे, बलि महाराज से बात करने लगे। तो इस प्रकार भगवान परम करुणवान अपने उदात स्वभाव को, व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भक्त के प्रति अपने संबंध को, अपने सौहार्द को भगवान स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं। सब मिलाकर भगवान यह कहना चाहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप चिंता न करें, मैं संपूर्ण जगत को यह दिखाना चाहता हूं कि मेरे भक्त कितने धैर्यवान होते हैं, कितने दृढ़ निश्चयी होते हैं, कितने सत्यवादी होते हैं, कितने सत्य संकल्पी होते हैं। एक बार संकल्प किया कि भजन करूंगा तो करूंगा, अब छोड़ना नहीं है, बस जीवन भर जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार अपने भक्त की भक्ति को जगत में स्थापित करने के लिए भगवान ने ऐसा व्यवहार किया।
यह है सिद्धांत, यह भगवान के व्यवहार का रहस्य है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।